शांति। निर्वैर भाई जी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय निर्वैर भाई जी का लौकिक जन्म पंजाब में हुआ। आप इंडियन नेवी में सर्विस करते थे और उसी दौरान ही आपको बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ। 1963 में आपने अपना जीवन बाबा की सेवा में समर्पित किया। आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल हैं और ग्लोबल हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। आपके मन में सदा ही सबके लिए शुभ भावना बनी रहती है। गुजरात के गवर्नर ने आपको श्री मोरारजी देसाई पीस एजुकेशन इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। यूएनओ में 1982 में निशस्त्रीकरण विषय पर आपने संस्था का प्रतिनिधित्व किया। बाबा की सेवा के लिए आपने अनेक देशों में भ्रमण करके अनेक आत्माओं का जीवन योगी जीवन बनने की उनको प्रेरणा दी। निर्वैर भाई जी के लिए मैं दो शब्द इतना ही कहूंगी, श्री बाबा को मिल बनाकर माया से वैर बना लिया। विश्व कल्याणकारी रहम दृष्टि ने आपको निर्वैर बना दिया, आपको निर्वैर बना दिया। प्रभु प्रेम के पाश में बंधकर झट से बंधन मुक्त हुए। बीमारी में भी फरिश्ता रूप आप मेडिकल सेवा के निमित्त हुए, आदरणीय निर्वैर भाई जी से अब हम क्लास करेंगे संपूर्णता की ओर।
ओम शांति। सबसे पहले आप सब भाई बहनों का जो भारत के कोने कोने से, नेपाल से तथा देख रहा हूं हांगकांग से, अन्य देशों से यहां पहुंचे हैं, सबका बहुत बहुत दिल से बारंबार स्वागत है। और बड़े अच्छे दिन पर सब पधारे हैं। मेरे सामने लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे, सबका अलौकिक जन्म का दिन है, बड़ी खुशी की बात है। मैं देखता हूं जिसका भी बर्थडे होता है, जिस दिन होता है उस दिन बहुत बहुत उनको खुशी होती है, नए उमंग होते हैं, नया संकल्प होता है, नए प्लान्स होते हैं। और सभी बाबा के बच्चे विशेष आत्माएं, चाहे देश में हैं चाहे विदेश में हैं, आज के दिन बल भक्ति मार्ग का शिवरात्रि का दिन कल होगा, लेकिन हम सभी मिल करके स्वयं शिव बाबा के साथ, बाप दादा के साथ आज विशेष अलौकिक अवतरण दिवस और ब्राह्मणों का अलौकिक जन्म दिवस मनाएंगे। प्लीज नोट, शिव बाबा का अलौकिक अवतरण दिवस है, उनका जन्मदिन नहीं है। जिसका जन्म होगा उसको शरीर छोड़ना पड़ता है, तो बाबा अनादि अविनाशी है, इसलिए उनका जन्म मैं समझता हूं शब्द जन्म की बजाय अलौकिक अवतरण दिवस ही अच्छा है। हम लोग मनाते भी हैं 69वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती, तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत बहुत महत्व का दिन है। भक्ति मार्ग वाले बेचारे भक्ति जरूर करते हैं, जागरण करेंगे, लेकिन जिस तरह से बाबा के ब्राह्मण बच्चे साथ में मनाएंगे, ये बहुत गौरव की बात है, बहुत अंदर से खुशी की बात है कि जिसकी दुनिया भर में भक्ति होती है, याद करते हैं, उनसे सन्मुख मिलन का अवसर सभी को नहीं मिलता है। तो आज जो देश और विदेश सभी सेवा केंद्रों के भाई बहने इस अनुभव से मनाएंगे के डायरेक्ट उनके अवतरण का 69वां दिन और हम सब उसमें शामिल हो रहे हैं, और बाबा ने अवतरित होकर के हम सबको नया अलौकिक जन्म दिया, और जन्म के साथ साथ बहुत बहुत ऊंची सौगात दी है। सबसे पहली सौगात तो यही है जो अलौकिक जीवन दी है। सारे संसार में इस समय अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछें? सभी कहेंगे हमसे पूछें। जिन्होंने सचमुच अलौकिक जन्म का आनंद लिया है, जिन्होंने बाबा की दृष्टि का आनंद लिया है, जिन्होंने बाबा के महावाक्यों का आनंद लिया है और उन पर चल करके अपने जीवन को ऐसा धन्य बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है, दिव्य बनाया है, अलौकिक बनाया है, ऐसे जीवन का जो सच्चा सुख है उसका आनंद ब्राह्मण ही बता सकते हैं। और उसकी सेलिब्रेशन के लिए, ऐसे सुंदर जीवन प्राप्त होने की सेलिब्रेशन के लिए जिनसे वो जीवन प्राप्त हुई है, आज हम सभी उनके साथ मनाने के लिए यहां इकट्ठे हुए, तो ये बहुत बहुत खुशी की बात हर एक के लिए है। और जन्मदिन के दिन अगर खुशी अच्छी तरह मनाते हैं तो कहते हैं वो सारा साल चलती है। और बाप दादा हमें इतनी खुशी देते हैं, वो कहते हैं सिर्फ एक साल की बात नहीं, 21 जन्म तो डबल ताजधारी बन के मनाओ, जीवन मुक्ति के अनुभव में रह करके मनाओ, और बाद में सिंगल ताज लेकर के मनाओ, लास्ट में आके एक दो जन्म ताज गंवा बैठे। फिर से बाबा ने एक ताज तो दे ही दिया है, सभी अनुभव करते होंगे जब से अलौकिक जन्म हुआ दिव्य जीवन बन गई, वो दिव्यता का ताज कहो, पवित्रता का ताज कहो, अलौकिक ताज कहो, वो मिल गया सबको। इस समय अलौकिक दिव्य सिंगल ताजधारी है, द्वापर युग से रतन जड़ित सिंगल ताजधारी है, लेकिन सतयुग से लेकर के आद से लेकर के थोड़े दिन पहले बाबा की वाणी थी श्री कृष्ण से लेकर के श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो वो भी कुछ कम डिग्री हो जाती, एकदम सतयुग के आद से लेकर के डबल ताजधारी बन जाते हैं, गोल्डन स्पून इन माउथ, जन्म से ही ऐसा प्राप्ति कराने वाला ये त्रिमूर्ति शिव जयंती का दिन है आज। और सिर्फ ताज नहीं, वो द्वापर युग के ताज नहीं, कलयुग के ताज नहीं, जहां कुछ ना कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम, किसी को परिवार की, वो हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं लड़ाई झगड़ों की, लेकिन ये ऐसा ताज जिसको कोई छीन न सके, और उसके साथ में गिफ्ट्स देखो क्या मिलती हैं बाबा से, सोचने की बात है क्या क्या प्राप्ति होती है। 100% 100% हेल्थ, कभी डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, दवा खाने की जरूरत ना पड़े, दवाई की जरूरत ना पड़े, एवर हेल्दी, बहुत सुंदर शब्द है इंग्लिश का, एवर सदा काल के लिए, जन्म से लेकर के बुढ़ापा शब्द भी नहीं आता है, जो बुढ़ापे का भी दुख हो। और बाबा कहते हैं बड़ी लंबी आयु, इतनी लंबी जो खुद मन में आता है कि अब काफी जी लिए इस लाइफ में, नेक्स्ट में चलें, 150 वर्ष के बाद। आज अगर कोई 125 साल का हो जाता है तो उसका बहुत अभिनंदन करते हैं, सारे विश्व में उसका नाम हो जाता है। और बाबा कहता है आप बच्चों को वर्षे के रूप में सदा स्वस्थ और दीर्घायु, वो भी 150 साल की, एक जन्म नहीं अनेक जन्म, ऐसी प्राप्ति कराने वाला ये अलौकिक दिव्य जन्म है। इसकी इतनी वैल्यू हमारे पास चाहिए, जब इसकी वैल्यू हो तो पुरुषार्थ तीखा हो। चलते चलते पुरुषार्थ ढीला होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पांव ढीला होने लगता है। इसलिए शायद आज बहन जी ने हमें ये टॉपिक दे दी है कि संपूर्णता की ओर। मैं सोच रहा था कि कई भाई बहने तो आज पहली बार आए होंगे यहां, और जिस तरह की मुरली एक दो दिन से सुन रहे हैं, कहीं ऐसा भाव लेकर के ना बैठे कि शरीर छोड़ना ही संपूर्णता है। इस बार पहली बार कौन कौन आए हैं जरा हाथ तो खड़ा करें देखें। बहुत भाई बहने हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो बाबा का भाव तो सदा तंदुरुस्त रहने का, लंबी आयु होने का, और उसमें भी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये है संपूर्णता की निशानियां। ऐसी स्थिति को जब हम प्राप्त करें तो कहेंगे संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न उठता है, एक तरफ बाबा कहते समय बड़ा थोड़ा है, और दूसरी तरफ इतना बड़ा लक्ष्य उसको प्राप्त करना थोड़े से समय में, ये कैसे संभव होगा। इस साल की जो अभी तक वाणी चली है, अव्यक्त वाणी, उसमें कई बार बाबा ने रिपीट किया है, कोई ऐसा ना समझे कि नहीं प्राप्त हो सकता। शुरू में भी कहते थे کہ لاسٹ جو آتے ہیں وہ فاسٹ جاتے ہیں اور فاسٹ جانے والے فرسٹ آ سکتے ہیں، لیکن اتنے فاسٹ نہیں چاہیے جو ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایکسیڈنٹ سے اگر جائیں گے تو پھر پراپتی پوری نہیں ہوگی، پھر دوبارہ جنم لینا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس لکش ہے، پہلے کہتے تھے سلو اینڈ سٹیڈی، پر بابا کی وانی کو اچھی طرح سٹیڈی کرتے ہیں، ساکار مرلی کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں، اویکت کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں، تو پہلے کہتے تھے جمپ لگاؤ، ہائی جمپ لگاؤ، پھر دھیرے دھیرے اس سے آگے کہا نہیں فاسٹ دوڑو، اس کے بعد کہا ڈسٹینس زیادہ ہے کار کا سفر کرو، پھر کہا اچھا پلین میں چلو۔ کہنے کا بھاو یہی ہے کہ اس بات کو پہلے پہچان لیں کہ کرنا کیا ہے، جو کرنا ہے اس کے لیے دوڑنا ضروری ہے، جمپ لگانا ضروری ہے، یا اڑتی کلا میں جانا ضروری ہے۔ اس پر وچار کرتے ہیں کہ اس کا تو سارا کنیکشن ہماری مانسک ستھتی سے ہے، مانسک ستھتی پر ہی ہماری ساری ایکٹیویٹی کا آدھار ہے۔ منسا شریشٹھ ہے تو کرم بھی شریشٹھ ہوتا ہے، وانی بھی شریشٹھ ہوتی ہے۔ منسا اونچ ہے تو اونچی طرف من جائے گا، تو کرم بھی اونچا ہی ہوگا۔ اس لیے ساری گیتا کا سار دیکھیں گے آپ، ساری گیتا کا سار آد میں، مدھے میں، انت میں ایک ہی دو شبدوں میں آ جاتا ہے۔ کرم کو شریشٹھ بنانا ہے تو بھی اسی سے ہوتا ہے، وانی کو میٹھا بنانا ہے، شدھ بنانا ہے تو بھی اسی سے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرانا حساب کتاب ختم کرنا ہے وہ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ اور وہ شبد ہے جو بھکتی میں، بھکتی مارگ کی گیتا میں بھی ہے، بابا نے بھی اس کو سویکار کیا، من منا بھاو، من میرے سے لگاؤ۔ اور سبھی کا ایک ہی بھکتی مارگ میں کہنا کہ باقی سب باتیں کرنا سہج ہے، بھکتی کرنا سہج ہے، یاترا کرنا سہج ہے، دان پن کرنا سہج ہے، لیکن من کو کنٹرول کرنا بڑا کٹھن۔ برہمنوں کو بھی اگر پوچھو بھائی پونا گھنٹہ یاد میں بیٹھتے ہیں، بٹھی کے دن آٹھ گھنٹہ بیٹھتے ہیں، اس آٹھ گھنٹے میں من کتنا ٹائم بابا میں لگا رہا اور کتنا سمے اور باتوں میں گیا، کہاں کہاں کی سیر کر کے آ جاتا ہے؟ تو یہ ہے سب سے بڑا پرشن۔ اگر سمپورنتا کی اور جانے کی بات کرنی ہے تو اس میں من کو من منا بھو کرنے کا آرٹ آنا چاہیے، یہ ہے سب سے شریشٹھ آرٹ۔ جس کو بابا کے ساتھ من لگانا آ گیا وہ سمپورنتا کو سہج پراپت کر سکتا ہے۔ ہر ایک وانی کے اندر آپ دیکھیں گے بابا بیچ بیچ میں یاد دلاتا ہے، اچھا بچے یاد کی یاترا کو اور آگے بڑھاؤ۔ اتنے تک بابا نے کہا کہ گیان کو سمجھنا اور بلکہ سمجھانا یہ تو چھوٹے بچے بھی کر لیتے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں پردرشنی وغیرہ ہوتی ہے تو بہت چھوٹی عمر کے بھائی بہنیں بھی، کئی بچے بھی، اسکول گوئنگ چلڈرن، وہ بھی پردرشنی کے چتروں پر بہت اچھا سمجھاتے ہیں۔ ایسے بھی انبھو ہوئے ہیں کہ جب وہ بچے سمجھاتے ہیں تو بڑے بڑے ان کی باتیں سن کر کے ان کے چرن چھوتے ہیں. لیکن ہے جب آتی ہے بات یاد کی یاترا کی تو اس میں آ کر کے تھوڑا ٹائم بہت اچھا من لگتا ہے, پھر کھسکنا شروع ہوتا ہے اور کھسکتے کھسکتے پھر اور کہیں نہیں تو کہاں پہنچ جاتے ہیں, ایک دوسری دنیا میں, سوپنوں کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. ابھی بھی کوئی کوئی پہنچے ہوئے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ اتنے گہری نیند میں ہیں اس سمے اس کلاس میں بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے. یوگ کا مطلب ہی ہے یاد کی یاترا کا ابھیاس, ارتھات ایک دم جاگنتی جوت بن کر کے بیٹھنا. اچھی طرح نوٹ کر لیجئے, اگر یوگ کے سمے جھٹکا کھا لیا اس سمے جو سچی کمائی ہونے کی بات ہے وہ نہیں ہوگی. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں بعد میں کہ آج شانتی کا انبھو بہت ہوا, لیکن شکتی کا انبھو چاہیے, کیونکہ شکتی سے ہی پرانا حساب کتاب ختم ہوتا ہے, شکتی سے ہی گاڑی آگے بڑھتی ہے, شکتی سے ہی اونچی اڑان میں جا سکتے ہیں. اگر شکتی نہیں, آتما شکتیشالی محسوس نہ کرے تو کیا ہوگا, پانچ وکاروں پر وجے نہیں ہوگی. یوگ کی شکتی سے ہی من کو جیتا جا سکتا ہے, یوگ کی شکتی سے ہی منو وکاروں کو جیتا جا سکتا ہے, اور یوگ کی شکتی سے ہی جب منو وکاروں کو جیتیں گے تو کرم میں بھی ان کو جیت سکیں گے. اور نہیں تو کیا ہوتا ہے, یوگ کے سمے پورا یوگ کریں گے لیکن جیسے بتایا نا شانتی کا انبھو کر لیں گے, بعد میں سنسکار پرانے پھر سے ایمرج ہوتے ہیں, پھر کوئی نہ کوئی الٹا سلٹا کام ہو جاتا ہے, وانی کچھ نہ کچھ الٹی سلٹی نکل جاتی ہے, کوئی نہ کوئی مس ججمنٹ ہو جاتی ہے, اور اس کے کارن کیا ہوتا ہے, پھر دکھ سہن کرنا پڑتا ہے, پشچاتاپ ہوتا ہے اور اپنے آپ سے دکھی ہوتے ہیں. کئی بھائی بہنیں کہیں گے بہت سمے سے ویسے تو گیان میں ہیں, بہت سمے سے ہیں لیکن ابھی تک من نہیں لگتا ہے. من نہیں لگتا ہے تو پھر آپ کے وکرم وناش کیسے ہوں گے, من نہیں لگتا ہے تو آپ انتی کو کیسے پائیں گے, من نہیں لگتا ہے تو آپ سمپورنتا کو کیسے پائیں گے. یہاں تو بابا نے کہا نہیں ہے کہ بھئی یہ شیوراتری آ رہی ہے تو آپ اتنا لوٹی دودھ چڑھانا یا پانی چڑھانا یا بیل پتر چڑھانا یا اور کچھ کرنا, ایسا تو کچھ نہیں کہا ہے. کبھی بھی بابا کی وانی پڑھ لو آپ, کبھی بھی ڈائریکٹ سن لو, ایک ہی بات پہ آتا ہے. اور آج کل بابا ڈرل بھی کرواتے ہیں, جب آتے ہیں ابھی بھی اس سمے بھی ڈرل کرواتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس سمے, اچھا ابھی باقی سب سنکلپوں کو بیج روپ کر دو, بند کر دو, بندو روپ میں بیٹھ جاؤ, یا کہیں گے اویکت وطن میں چل کے بیٹھ جاؤ. تو یہ سوچنے کی بات ہے, بڑی مہین بات ہے کہ من کو بابا سے کیسے پیار سے لگا کر کے ایک ٹک کر دیں تاکہ سرو شکتیوان کی شکتی آتما میں آ سکے, اس کا انبھو کر سکے اور اس شکتی سے پرانا حساب کتاب ختم ہو جائے. ابھی تک اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پرانی عادت کے مجبور ہیں, ابھی تک ہمارے اندر سنکلپوں میں کوئی اس طرح کے نیگیٹو विचार आ जाते हैं, हमारी दृष्टि में कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं, ये निशानियां हैं कि अभी तक पुराना हिसाब किताब, पुराने संस्कार मिटे नहीं हैं। और जब तक पुराने मिटे नहीं हैं, तो संपूर्णता की ओर जाने की बात ही कहां हुई। संपूर्णता की निशानियां ही हैं कि मन हमेशा तर रहे, उड़ता रहे, उड़ती कला में रहे। जब मन उड़ती कला में रहेगा तो आप सोचिए आपके विचार कितने ऊंचाई में चलेंगे, आपकी प्लानिंग कितनी ऊंचाई में चलेगी। सदा ही शुभ सोचेंगे, आपका कोई बुरा भी कर रहा हो तो भी कहेंगे कोई बात नहीं, ये भी कोई पुराना हिसाब किताब है, खत्म हो जाएगा। उसके बुरा करने पर आप बुरा नहीं करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे, कुछ सोचेंगे इसका कुछ तो करना पड़ेगा, कोई राय देंगे इसके ऊपर केस करो, घसीट लो, केस करके अपने आप को कोर्ट में जाना शुरू करो, उससे कौन सा हिसाब किताब चुकता होगा और बढ़ेगा। तो ये थोड़ा सा गहराई में जाएं हम, और इसका सहज सरल तरीका बाबा ने बताया है, ज्यादा और बातों में ना जा करके, बहुत सरल, एक सेकंड में मन को बाबा के पास ले जाए। बड़ा अच्छा तरीका बाबा ने बताया, इतना ही दिल से कहो, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हेलो बाबा। जैसे ही संकल्प करेंगे कहां पहुंचेंगे, ज्ञान सब मिला हुआ है, बाबा कहां पर है, किस स्वरूप में है, कितनी शक्ति है उसमें, कितने गुण है उसमें। ऐसे बाप के पास पहुंचने से, उनके संग में रहने से आत्मा पर उनका रंग चढ़ता है, पुराना रंग निकलता है, माया का जो मैल है, मैल का रंग है, वो मिट जाता है, और शिव बाबा की, सर्वशक्तिवान की शक्ति का रंग कहो, सर्व गुणों का रंग कहो, वो आत्मा में चढ़ता है, और उसकी एक विशेष अनुभूति होती है, मन हल्का होने लगता है, लाइट हो जाता है, फिर कभी हेडेक नहीं होगी आपको, सिरदर्द कभी नहीं होगा, कोई गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर सिरदर्द के लिए। सिरदर्द होता ही तभी है जब यहां कन्फ्लिक्ट है, पुराने संस्कार और अभी का उमंग दोनों की युद्ध चलती है तो सिर दर्द होता है। जितना इस खुशी में रहें और उस खुशी से बाबा के संग में रहें, पाना था सो पा लिया, नया जीवन पा लिया, बाबा को पा लिया, नया जीवन पा लिया, नया ईश्वरी परिवार पा लिया, इतनी सुंदर बातें अगर सोचने लगे तो। ऐसा जब संकल्प चले तो मन हल्का रहे, और फिर इसके साथ में बहुत बड़ी कारोबार बाबा ने दे दी, अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बनो। जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी है, तो आप बच्चे भी मास्टर विश्व कल्याणकारी बनो। ऐसे कार्य में मन लगने से मनमना भव रहना बड़ा सहज होगा। अपने ही अंदर अगर युद्ध चलती रहेगी, भारी रहेंगे, और भारीपन में कभी भी उड़ नहीं सकते। लाइट होंगे तो उड़ेंगे, लाइट जितना होंगे उड़ेंगे, इसलिए कहा जाएगा कि आज के दिन विशेष ये वरदान बाबा से प्राप्त करें कि हम सदा उड़ती कला में रहें, सदा मन को मनमना भव करके। बाबा कहता मन मेरे में लगाओ, ये नहीं कहा ये भक्ति का ये रूप ठीक है मेरे लिए, ये दान करने का रूप ठीक है मेरे लिए, वो सब नहीं कहा है। मेरे साथ दिल से प्यार से मन को लगाओ, तो उसका बड़ा सहज तरीका देखा कि अंदर ही अंदर मन की आंख से एक तो बाबा को देखने का अभ्यास करो, उसको अंग्रेजी शब्द कहते हैं विजुलाइजेशन। जितना उनको देखेंगे उतना उनके सामने रहेंगे, सन्मुख रहेंगे, दूर नहीं जाएंगे। दूसरा, उसके साथ में इस महसूसता में जाएं कि ये इतने महान ते महान, ऊंच ते ऊंच बाप की संतान में आत्मा, मेरे अंदर क्या क्या ऐसी विशेषताएं बाबा ने भरी है या भर रहे, उसके लिए मैं बाबा को दिल से जैसे प्यार भी करूं, थैंक्स भी दूं। और तीसरी बात इसमें आनी जरूरी है, जैसे किसी से डायरेक्शन पूछा जाता है, टेलीफोन करके पूछते हैं आज ये बात है बताइए क्या करूं मैं, तो बाबा से डायरेक्शन लेने का एक अभ्यास चाहिए। एक डायरेक्शन मिलते हैं मुरली से और दूसरे हैं जो बड़े सूक्ष्म ढंग से योग के द्वारा प्राप्त होते हैं। कई ऐसी सिचुएशन आती, कई ऐसी बातें आती हैं, उस समय आप मुरली पढ़ के मुरली को देख के वो नहीं कर सकते, तो एक इंस्टेंट एक अभ्यास चाहिए, एक सेकंड में बाबा की तरफ मन को ले जाए। अभी क्या करना है बाबा, आप क्या चाहते हैं, और जितना हम सच्ची दिल से सच्चे प्यार से बाबा की तरफ मन को लगाएंगे, क्लियर बाबा की डायरेक्शन हमें मिलती है, बहुत क्लियर मिलती है। कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी रॉन्ग नहीं होगा, कभी मिसलीड नहीं होंगे। एक उसके कैच करने की अपने अंदर शक्ति चाहिए, और दूसरा है उस पर अडिग होने की शक्ति चाहिए। तो जितनी इस बात में दृढ़ता होगी कि मैं बाबा की श्रीमत पर चल करके संपूर्ण पावन बनूं, संपूर्ण दिव्य बनूं, संपूर्ण ज्ञानी तो आत्मा बनूं, अज्ञान की कोई बात मन में ना आए, ऐसी दृढ़ता अपने दिल में जब होगी तो आप देखेंगे कि अंदर से दिल से बाबा के गीत गाते रहे। इतने गीत बजते हैं, मैं तो देखता हूं हर साल नई कैसेट्स बनती हैं, गीत याद हो जाते हैं लेकिन मन बाबा में लगाना वो कठिन लगता है। वास्तव में तो होना चाहिए कि इतना अच्छा अनुभव दिल ही दिल में हो, इतना अच्छा अनुभव साइलेंस में हो कि आप अपने गीत गाएं। फिर शुरू शुरू में, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं, साकार बाबा के सामने कुछ अपने अनुभव के गीत भाई बहने ले आते थे। उन दिनों में ये कैसेट नहीं थी, उन दिनों में अपने गीत नहीं थे, वो ग्रामोफोन के रिकॉर्ड थे, पर बाबा कहते थे ये भी बाबा ने उन बच्चों को टच करके बनवाए, बहुत सुंदर गीत होते थे। आज भी बाबा कहता कभी अगर उदास हो जाओ, कुछ हो जाओ, तो वो गीत सुनो आप, और उसमें एक गीत मुझे बड़ा अच्छा याद आता है, कभी सुन लेना आप, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। सुना है आप लोगों ने गीत कभी? इतना सुंदर गीत है वो। ऐसे गीत अपने दिल से निकलने चाहिए, वो तभी निकलते हैं जब मन मना भव, मन बाबा में लगा रहे, मन पावन बन जाए, लाइट हो जाए, तो दिल से ऐसे गीत निकलेंगे। संपूर्णता की निशानी यही है कि एक तो आपको अपने जीवन में सदा लाइट फीलिंग चाहिए, अपने मन की बड़ी लाइट फीलिंग चाहिए, अपने संस्कारों की बड़ी लाइट फीलिंग चाहिए, अपने व्यवहार की बड़ी लाइट फीलिंग चाहिए, और दूसरा सभी भाई बहनों के प्रति बड़ा सुंदर और बड़ा इज्जतवान, रिस्पेक्टफुल भाव चाहिए। चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे समान हैं, सबके प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल आदर भाव चाहिए। क्यों? अब जब समझ में आ गया कि ये तो सब डबल ताजधारी बनने वाले हैं, हम भी बनने वाले हैं, ये भी बनने वाले हैं, आज लौकिक दुनिया में जिनके ताज उड़ गए हैं उनके सामने भी किस तरह से लोग बाअदब, उनके सामने कैसे उनको एड्रेस करते हैं। राजस्थान में तो अभी बहन जी से मैं हंसी में बात कर रहा था, मैंने कहा राजस्थान में जबकि अभी बेताज राजा हैं, उनके पास जो वर्कर्स हैं काम करने वाले, जब कोई उनको आवाज देगा तो क्या जवाब देते? हुकम, ऐसा एक रिस्पेक्ट से। तो इतने सब ताजधारी बाबा के बच्चे सामने हों, कितना दिल से, प्यार से, रिस्पेक्ट से दृष्टि होनी चाहिए। ये संपूर्णता की निशानियां हैं, और नेचुरल चाहिए, कोई उसके अंदर वो नहीं चाहिए जो दूसरे को लगे कि ये मेरी हंसी कर रहे हैं। नहीं, जब समय की समीपता कह रहे हैं, बहुत समीप आ गया है समय, तो उसके अनुसार, सबकी स्थिति के अनुसार, और होवनहार देवी देवताओं के निमित्त, होवनहार डबल ताजधारी जो भी बनने वाले हैं उनके प्रति क्या भावना चाहिए। जो संपूर्णता के समीप होगा वो दूसरों को भी संपूर्णता के समीप देखेगा, और ऐसा देखने वाला इज्जत देगा और उनको भी इज्जत सभी देंगे, ऑटोमेटिक देंगे, मांगने की जरूरत नहीं। और लास्ट की बात, और वो बात है संपूर्णता की निशानी में जब अंतिम समय आता तो क्या सोचते हैं, कोई कार्य रह ना जाए, जो भी करना है वो कार्य पूरा कर लिया जाए ताकि लास्ट में वो कार्य याद ना आए। अगर कोई कार्य लास्ट में याद आता है तो उसकी चिंता होती है, चिंता होती है तो चेहरे पे खुशी नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ब्राह्मणों ने क्या करना है, जीते जी भोग। हाँ, एक तो वो करते हैं, मैं यहां देखता हूं हर गुरुवार के दिन मोहिनी बहन सुनाती हैं, उनके लिए बाबा का संदेश लेके आती हैं, लेकिन सिर्फ उतने तक नहीं, कहते हैं ऐसा कार्य करके जाओ, एक तो आप जाने समय आपके चेहरे पर वो खुशी हो, रौनक हो, और दूसरा इतना श्रेष्ठ कार्य करके जाओ کہ سبھی یاد کریں، سبھی آپ کے ایگزامپل سے سیکھیں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں۔ جیسے بابا کے لیے کہتے ہیں بھائی فالو فادر، مما کے لیے کہتے ہیں فالو مدر، اسی طرح سے آج اپنے آپ سے ہم پوچھیں، سمپورنتا کی اور جانا ہے تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ بابا اور مما کو فالو کرنے میں کتنے پرسنٹ میں پہنچا، کیا ان کی طرح میری تیاگ ورتی ہے، کیا ان کی طرح میری اتنی سمرپنتا ہے، کیا ان کی طرح میری یوگی جیون ہے، کیا ان کی طرح میں نے پانچ وکاروں کو جیتا ہے، کیا ان کی طرح میں میرا ہر پل جو ہے من وانی کرم سے سیوا میں جا رہا ہے۔ یہ کوشچنز اپنے آپ سے پوچھنے ضروری، کیونکہ کسی سے بھی پوچھیں گے نا تو کوئی بھی سری لکشمی یا سری نارائن بننے سے کم کی بات کوئی نہیں کرے گا۔ کوئی ایک بھی ہاتھ کھڑا کرے جو رام اور سیتا بننا چاہتا ہے، کوئی نہیں کرے گا۔ اور بابا بھی کہتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن بننے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے، سمپورنتا ہے ہی نر سے سری نارائن بننا، ناری سے سری لکشمی بننا، ہونا تو وہی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں یہ ہمیشہ سامنے مثال جو ہے ہمارے، اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ بابا کہتے تھے بھکتوں کی طرح مجھے یاد نہ کرو، وہ بہت کیا، 63 جنم وہی کرتے رہے۔ اب بابا کے بچے جو ساکار بابا سے ملے ہیں وہ آپ کو انبھو سنا سکتے ہیں۔ بابا کبھی پاؤں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، بابا کہتے تھے نہیں بچے، آپ تو بابا کے نینوں کے نورے رتن ہو، بابا کے سر کے تاج ہو، تو درشتی سے ملنا، گلے ملنا، وہ بابا کے سمے ہم لوگوں نے انبھو کیا، جبکہ اس سمے نئے نئے بھائی بہنیں سوچیں گے کہ بھائی ہم اس یوگ کے کہاں، بابا ہمیں کیا کہتا ہے، کہاں بٹھاتا ہے۔ لیکن بابا ہمیشہ ہم بچوں کی فائنل سمپورن سٹیج کو دیکھ کر کے کہتا، بیچ کی ستھتی کو نہیں دیکھتا۔ تو ہم بھی جتنا اپنی اس سمپورن ستھتی کا آواہن کریں گے اتنا ہی اس ستھتی کو پراپت کریں گے، جتنا اس کا آواہن کریں گے اتنا اس کا سوروپ بنیں گے، اور اس کا سوروپ بنیں گے تو پریکٹیکل انوبھوتی ہوگی، اور اس کا سکھ جو ہے وہ ہے اتی اندریہ سکھ، اندریوں کے سکھ سے بہت بہت اونچا۔ اسی کے لیے کہتے ہیں کہ اتی اندریہ سکھ پوچھنا ہو تو برہمنوں سے پوچھو، بابا کے بچوں سے پوچھو، ایسی ستھتی ہو کہ ہمارے جیون میں کوئی ایک بھی کشن ایسا نہ آئے جب ہمیں دکھ کی محسوستا ہو۔ ایسا گیانی تو آتما بنے، ایسا یوگی تو آتما بنے، ایسا سیوا دھاری بنے، اتنا شریشٹھ، اتنا اونچ، ایسی ستھتی کو پانے کا جب لکش رکھتے ہیں تو اڑتی کلا کا انبھو ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے پھر سے بیسک بات جو ہے کہ من کو ادھر ادھر نہ بھٹکا کر کے ایک بابا دوسرا نہ کوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے بالکل ہم وہ سنیاسی نہیں ہے، ईश्वरी परिवार है, परिवार के नाते से हमारे सब बहनें भाई आपस में बहुत बहुत सच्चा जिगरी, जिसको कहें रूहानियत का प्यार है। लेकिन याद एक बाप की, जितना उसमें आप जाएंगे उतना सच्चा सुख भी पाएंगे, उतना ही उन्नति को पाएंगे और संपूर्णता बहुत समीप दिखती है। और उसके फलस्वरूप जो थोड़ी बहुत विघ्न भी आते हैं, शरीर से भी आते हैं, बीमारी से भी आते हैं, उन पर भी विजय हो जाती है। क्योंकि इसी जन्म में ये अनुभव होना चाहिए, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, हमारे जितना धनवान दुनिया में कोई नहीं है, ये अनुभव होना चाहिए। बाबा की वाणी अभी दो तीन दिन पहले थी, बच्चे ये जो ज्ञान रत्न तुम बच्चों को देता हूं, एक एक ज्ञान रत्न की वैल्यू क्या है, लाखों है, करोड़ों है। तो हम तो हंसी हंसी में कहते हैं आप तो बहुत ही बहुत धनवान है, जब से भी मुरली सुननी शुरू की, चाहे एक साल से हो, चाहे दो साल से हो, चाहे बीस साल से हो, चाहे चालीस साल से हो, एक मुरली में कम से कम, साकार मुरली में मैं कह रहा हूं, कम से कम 20-25 पॉइंट होती है। नोट करना आप, 20-25 पॉइंट, एक एक की कीमत आप लगाओ थोड़ा, कितने लाख लगाओगे? 2 लाख लगा लो, 3 लाख लगा लो, इतनी कमाई किसी की होती है दुनिया में? एक दिन में 25 लाख, चलो एक एक लाख ही मान लो, 20-25 लाख एक दिन में कमाए, महीने में कितना हो गया, और एक साल में कितना हो गया, कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए आपके ऊपर? तो ये थोड़ा सा ज्ञान की भी जो विचार सागर मंथन है, उसका भी हमें थोड़ा ऐसे खुशी खुशी जब करते हैं तो नशा चढ़ता है। जब ऐसा नशा चढ़े तो दुनिया से, पुरानी दुनिया से मन हटे, नहीं तो पुरानी दुनिया भी एक जेब पुरानी दुनिया वाली है और एक जेब नई दुनिया वाली, अब ये दोनों हाथ ऐसे हैं तो क्या होता है, जेब में ही रह जाते हैं। लेकिन वो दोनों हाथ बाबा क्या कहता है कैसे होने चाहिए, दाता के हाथ कैसे होने चाहिए, देने वाले चाहिए। संपूर्णता की निशानी है दाता बन करके सबको देते रहना, और अंदर में सदा ऐसा भरपूर महसूस करें कि हमारे जितना धनवान दुनिया में कोई नहीं है। तब आप कहेंगे कि हम संपूर्णता के समीप पहुंच गए हैं। ओम शांति। अभी सभी भाई बहने निर्संकल्प होके 15 मिनट अच्छी तरह से बाबा के साथ शक्तिशाली स्थिति में बैठें, एक तो सीधा बैठें, नींद आने का कारण एक ये भी बनता है, आराम से बैठते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम भी थोड़ा ऐसा है, क्योंकि 4 बजे 3:30 बजे उठते हैं तो थक भी जाते हैं, शरीर भी 84वें जन्म के हैं, 5 तत्व भी थोड़े पुराने हो रखे हैं। लेकिन बाबा कहता है जब आप खुशी में होते हैं तो, बाबा की तो कई बातें ऐसी हैं, खुशी खुशी में तो कई बार रात के 10, 11 भी 12 भी बज जाते हैं तो भी नींद नहीं आती है। तो अभी तो दिन के ही बहुत अच्छा टाइम है, खुशी से एकदम और शक्तिशाली स्थिति से बैठे, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो शक्ति किस बात में है? जब ऐसे शक्तिशाली स्थिति से अपने वाइब्रेशन सारे विश्व को शक्ति देने के लिए यूज करें, अन्य आत्माओं तक भी ये वाइब्रेशन पहुंचे तो वो भी श्रेष्ठ मार्ग की तरफ उत्सुक हो जाएं। ऐसा जब किसी को अनुभव हो, दिल ही दिल में उनको लगे कोई बुला रहा है, कोई खींच रहा है, कोई मुझे चाहता है कि मैं इसी अच्छे रास्ते पर चलूं, ऐसे शुभ भावना से योग में खास बैठना है। ओम शांति। थोड़ा मुस्कुराते हुए बैठेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा।
निर्वैर भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट में हमें बहुत पावरफुल योग कराया।